के मन की बगिया में होगी चहूं और खुशहाली। कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली, हमारे मन की बगिया में होगी चहूं और खुशहाली। आपके प्यार की दिल पर, आपके प्यार की दिल पर हुई बरसात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है, आपका साथ है बाबा।
ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबको एक बार फिर से मधुबन में इतनी लगन की भट्टी करने की, उमंग उत्साह भरने की और अपने श्रेष्ठ परिवर्तन की और सारे गुण ज्ञान खजानों से स्वयं को भरने की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। सबसे पहले आज के महावाक्यों पर एक दृष्टि डालते हैं। कौन सी बात बहुत अच्छी लगी आज, कौन सी बात बहुत प्रिय लगी, सबका अपना अपना होगा, लेकिन एक बात बहुत हार्ट टचिंग। बाबा कहते हैं कि बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं। फिर बाबा क्या कहते हैं, कहते हैं कि बच्चों को विश्व की बादशाही दे देता हूं और खुद वानप्रस्थ में बैठ जाता। तो कितनी बड़ी निरहंकारिता है। मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट कहना, सेवा में हाजिर रहना और अपना शो नहीं करना। शिव बाबा तो गुप्त है, निराकार है, वो तो निरहंकारी है ही है, निराकारी भी है निरहंकारी भी है। लेकिन ब्रह्मा बाबा भी निरहंकारी, दोनों बाबा, बाप और दादा, दोनों निर्माणता के, निरहंकारिता के प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति थे, जिनको कोई भी अहंकार टच नहीं किया। तो ऐसे बाप जैसा निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी जैसा बाबा है, उस बात को समझने वालों का, और वो विश्व की बादशाही देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं, इस बात को अच्छी तरह समझने वालों का, सारे विश्व में बाप का पैगाम देने वालों का। और पैगाम क्या देना है कि तुम सब दुख हर्ता सुख कर्ता की संतान हो, तुम्हें कभी किसी को दुख नहीं देना है, तुम सुख दाता को याद करो और फॉलो करो, तो आधा कल्प के लिए तुम क्या करेंगे, सुखधाम में चले जाएंगे। ये सबको पैगाम दो, जो ये पैगाम को धारण करेंगे वो 21 जन्मों के लिए क्या हो जाएंगे, बोलो, माया की बेहोशी से मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे, है ना। इस बात को भी अच्छी तरह समझने वालों का और धारणा सार के अनुसार बाप समान ओबीडियंट बनना है, कभी किसी बात में अहंकार नहीं दिखाना है, निराकारी और निरहंकारी बनना है। बाप टीचर और सद्गुरु की कंट्रास्ट को बुद्धि में रख निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है, रूहानी यात्रा करते रहना है। और आज के वरदान के अनुसार पुरुषार्थ शब्द के यथार्थ अर्थ को जानकर सही रूप से यूज कर आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बनो। कितनी अच्छी बात बावन बताई, पुरुषार्थ का सही अर्थ क्या है, अगर उसको समझ लिया जाए तो पुरुषार्थ निरंतर आगे बढ़ता रहे। स्लोगन के अनुसार मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती रहेगी। अब इस स्लोगन को जरा ध्यान से सुने समझें। अगर दिन भर हम मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं इस बात की स्मृति करते रहें, इसको ढालते रहें अपने अंदर लाते रहें, तो क्या होगा, क्या होगा? तो जो दिन भर में हम कहते ना मेरा तो ऐसा ही है, मेरा तो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तमाम दिन भर के लिए जो शिकवा शिकायत कमी तेरा मेरा जो जितनी भी चीजें हैं कमजोरी के जो बोल हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दिन की दिनचर्या में जितना हो सके इस बात की स्मृति को पक्का करें कि कम से कम 20 बार 25 बार 30 बार बोलेंगे तो सारे दिन में स्वमान में रहने से अपनी श्रेष्ठ स्थिति का आभास होता रहेगा, शक्तियों से भरे रहेंगे, ज्ञान से अपने आप को क्या करेंगे, ज्ञान से भिगोए रहेंगे। जिसे बार बार हम उस चीज के चिंतन में रहेंगे तो जितने भी व्यर्थ है परचिंतन है कमजोरी है हीन भावनाएं हैं इनसे सहज ही मुक्त हो सकेंगे। इसलिए स्वमान को स्मृति में लाना बहुत आवश्यक है। फिर उसमें भी है कि एक एक सेकंड में अव्यक्त इशारे में सेकंड में अपने मन को बुद्धि को स्टॉप करें, कंट्रोल करें, मन को भी और शारीरिक क्रियाएं जो चल रही हैं उनको भी करते करते बीच बीच में स्टॉप करें। स्टॉप करके एक सेकंड के लिए भी अगर हम निराकारी बिंदु रूप की स्थिति का अभ्यास करेंगे तो ये हमारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ी अपलिफ्टमेंट देगा, बहुत बड़ी बढ़ोतरी करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है जैसे अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं निराकारी स्वरूप बनने का, निराकारी स्वरूप में बन करके ही हम निरहंकारी बन सकते हैं। जब तक देह है देह का भान है देह का अभिमान है, तब तक देह का संसार है और देह के संस्कार है और देह की दुनिया है, देह के सारे झंझट है। और जब हम निराकार बन जाते हैं तो ही निरहंकारी बन पाते हैं। ठीक है, इसलिए आइए आज के इन महावाक्यों पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा जैसा कोई निरहंकारी और निष्काम सेवाधारी है ही नहीं, दूसरा तो आप बच्चों को भी निष्काम सेवाधारी और निरहंकारी और निराकारी बनना है। तो देखा जाता है पुरुषार्थ में, हमारे पुरुषार्थ में सबसे बड़ी जो बाधा बनती है जो हमको सर्व प्राप्तियों से वंचित करती है जो परमात्मा से हमको दूर रखती है जो पुरुषार्थ में सबसे बड़ी बाधा और विघ्न पड़ता है वो विघ्नकारी तत्व है हमारा अहंकार। अहंकार विघ्नों का द्वार है, सारे विघ्नों का द्वार है अहंकार। अहंकार से शून्य होना संपूर्ण निरहंकारी बनना अर्थात संपूर्णता को प्राप्त कर लेना। इसलिए बाबा के अंतिम ये बोल यज्ञ में सब भाई बहनों को मालूम है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो। निराकारी बन जाएंगे वो तो ठीक है, और निर्विकारी बन गए माना सारे विकार से तो मुक्त हो गए, पांचों विकार आ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भी आ गया, फिर भी तीसरा शब्द है निरहंकारी बनो। अब जब निर्विकारी बन गए तो निरहंकारी तो बन ही गए, फिर भी निरहंकारी बनने की विशेष जो प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, वो करना शेष रह जाता है। अब वो सीढ़ी आप देख रहे हैं राजयोग की दौड़ स्वर्ग की ओर, उसमें यही है कि पहला भी विकार क्रॉस कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, चौथा भी कर लिया, लेकिन जो आखिरी है, हैं, जो ऊंची पढ़ाई चढ़ाई है, पहाड़ी है, उसको चढ़ेंगे तो ही बैकुंठ में पहुंचेंगे। इसलिए कहते हैं कि यह है सबसे ऊंची खजूर है, यह सबसे बड़ी ऊंची खजूर है, जहां पर चढ़ गए तो चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर, यह है लंबी खजूर, है ना। तो यह है अहंकार। एक गीत याद आता है, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको याद करे वो याद प्यार हमें देते। बाबा मेरे कितने महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में, मुझसे भी आगे तुम बच्चे, कह करके उमंगे भरते हैं, सारा जग जिनको याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा ये आपकी बलिहारी, बेहद सेवा आप भी करते, बाबा ये आपकी बलिहारी, कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी सेवाधारी, आज्ञाकारी सेवाधारी, सब काम आप खुद करते हैं और मान हमारा रखते हैं, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं, बच्चों को नमस्ते करते हैं, है ना। और बेहद सेवा अब भी करते, बेहद सेवा अब भी करते, और उपहार स्वर्ग हमें देते हैं, सब कुछ निछावर कर देते हैं। ऐसे बाबा को जब प्यार से हम याद करते हैं तो बाबा की विनम्रता देखकर इतना मन गदगद हो जाता है, स्नेह से बाबा के प्रति प्यार से हम भर जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम बड़ी बारीकी से देखें कि मुझे कहीं किसी बात का अहंकार तो नहीं है, और ये अहंकार सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं हम सबके मन में होता ही है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी शक्कर ले चली और हाथी के सिर धूल। इसलिए जितना विनम्र बनना वही परमात्मा के करीब आने का सबसे अच्छा। जो कोई भी कहते हैं कि मेरा योग नहीं लगता है, वो अंदर में देखें तो बाबा से दूर करने में हमारी दमित इच्छाएं, हमारी सूक्ष्म कामनाएं, कुछ मान शान पाने की प्रबल इच्छा और कुछ दिखावे की प्रवृत्ति और कुछ सांसारिक बातों में जो मोह है, जो आकर्षण है, वो भी देहाभिमान के अंतर्गत आता है। दोनों ही एक ही सूत्र के दो छोर हैं। अहंकार होता है फुल, या तो अपना समान रहता ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहता है, या तो इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या तो सुपेरियरिटी होते है कि मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत ऊंचा हूं। और दोनों के बीच में रहना, मध्य मार्ग में रहना, स्वमान में रहना, अभिमान से शून्य होना, यही हमारे पुरुषार्थी जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तन का अहंकार, मन का अहंकार यानी बुद्धि का अहंकार, और धन का अहंकार अपने जाति, गांव, देश, स्थूल चीजों का अहंकार, ये सब तो अहंकार होता ही है, ये कोई बड़े अहंकार नहीं है। लेकिन बड़ा अहंकार और सूक्ष्म अहंकार है, लोग मुझे जाने, मेरा नाम हो, मेरा शान हो, मेरी पहचान हो। हर आत्मा, हर व्यक्ति जो दुनिया में है और अपना आइडेंटिफिकेशन ढूंढता है, लोग मुझे जाने, मैं भी तो कुछ हूं। लेकिन जब ये आगे बढ़ने लगता है तब इस लेवल पहुंचते हैं कि मैं किसी से कम नहीं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। ये अहंकार की प्रबलता है, ये मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार की प्रबलता है। आइए कुछ नोट कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, अहंकार की निशानियां क्या है, कैसे समझा जाए कि मेरे अंदर भी अहंकार है कि नहीं, जानना जरूरी है ना। आपके किसी के अंदर तो नहीं है, फिर भी जान लेते हैं कि देख लेते हैं, हो सकता है कहीं कोने में कहीं बैठा हो, विराजमान हो। वैसे तो स्वभावगत, जैसा नेचर की दृष्टि से कहते हैं कि भाइयों में रोब होता है, अहंकार होता है, क्रोध होता है, और माताओं में, सब माताएं जानती हैं, बताने की जरूरत नहीं है ना। अब रही बात की ये अहंकार जो है क्यों और कैसे किस रूप में आता है। अहंकार उस अग्नि की तरह है जो अहंकारी को तो जलाता ही है, लेकिन जो उसके संबंध संपर्क में आता है उसको भी जलाता है। अहंकारी उस गरजते हुए, हाहाकार करते हुए बादल की तरह है, जो गरजता तो बहुत है लेकिन बरस नहीं पाता है, वो जलहीन बादल की तरह आया, गरजा और फिर चला गया। मैं छोटा था, कक्षा 5 में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में, हमारे पिताजी हेडमास्टर थे, तो उनका बेटा होने के नाते सारे सहायक अध्यापक वो हम पर बड़ी मेहनत करते थे। वो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, बड़े अच्छे अच्छे किताबें वो हमको देते थे और प्रैक्टिस कराते थे। तो 5वीं का बोर्ड का जो एग्जाम हुआ, 5वीं का, तो उसमें एक कोई बहुत अच्छा गायक था, वो बहुत अच्छा गाता था, उसका वही मतलब रहा होगा पेशा ही, तो लोगों को जब भी होता था बड़ा अच्छा गाता था, हमको भी लगता था अच्छा गा रहा है। तो फाइनल जब एग्जाम हुआ तो उसमें जब ये कुछ गीत को वगैरह कुछ सुनाने का हुआ तो सबको लगा कि वो तो बड़ा नंबर ले लेगा। और मैंने कहा मैं तो कुछ ज्यादा जानता नहीं हूं, मैं भी कविताएं तो है वो तो याद कर लिया था, जयशंकर प्रसाद के, मैथिली शरण गुप्त की, मनुष्यता के, और ढेर सारे इतना याद कर लिया था। तो मैंने भी सुनाया और मेरा नंबर सबसे आगे नंबर आया, उसका नंबर आया ही नहीं। तो वो देखने में आता था कि भाई है भी कलाकार और थोड़ा अहंकार भी था उसका। तब लोगों ने बताया जब मैं जीत गया, मतलब नंबर हमारा आगे आ गया, तो तब का वो स्लोगन याद आता है बचपन का, मास्टर सब कहने लगे कि जो गरजता है वो बरसता नहीं और जो बरसता है वो फिर गरजता नहीं। तब से मन में वो मुझे स्लोगन वो याद आया, इसलिए मैंने सुनाया। तो कहने का भाव ये है कि विनम्रता के साथ अपना काम करते चले। तो और ऐसा भी है, पुरुषार्थ हम बहुत कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, ज्ञान भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब करते हुए भी यदि अहंकार है तो जैसे दूध का भरा हुआ मटका और उसमें कुछ डाल दिया, दो बूंद नींबू का डाल दिया, कुछ डाल दिया गया, तो धीरे धीरे करके पूरा फट जाता है, सब बेकार हो जाता है। ऐसे ही हमारे पुरुषार्थ की इस अनंत उपलब्धियों में अहंकार एक ऐसा विष है जो संपूर्ण प्राप्तियों को क्षरण कर देता है, सबको क्षति पहुंचाता है, नष्ट कर देता है। इसलिए अहंकार को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, अगर हमको तनाव होता है, टेंशन में आते हैं, तो समझना चाहिए कि अहंकार फुल भरा है, क्योंकि अहंकार ही तनाव का कारण बनता है। जहां तनाव है, जहां अहंकार है, वहीं तनाव है, और जहां अहंकार है ही नहीं, वहां कोई तनाव की बात ही नहीं। सबसे बड़ा जो लक्षण है वो तनाव के रूप में आता है। दूसरा है, अहंकारी कभी ग्रहणशील नहीं बनता है, गुण ग्राहकता उसके अंदर नहीं होती, वो किसी से कुछ सीख सके नहीं, वो समझता है मुझे कोई सिखाने वाला ही नहीं, इसलिए उसके अंदर ग्रहण क्षमता नहीं होती। तीसरी बात, अहंकारी वो हर बात में अपने आप को विजयी घोषित करता है, उसके लिए चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, हार हो तो उसमें भी जीत ही अपना अनुभव करता है, और किसी भी तरह से वो अपने जीत को ही बताना चाहता है। इसलिए अहंकारी जिद्दी होता है, जहां भी जिद्दी है, जहां झगड़ा है, वहां देख लीजिए अहंकार ही होता है। झगड़ा जो है वो अहंकारी की निशानी है, अगर अहंकार ना हो तो झगड़ा ही ना हो। दादी क्लास में बैठे थे और बहुत पब्लिक बैठी थी, दादी मेरी मीटिंग हॉल में शायद शांति बन और भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में भी कहती थी, हारमनी की बात होती थी, दादी कहती है भाई हार मान ली अभी तो हारमनी कर दो, हार मान ली बस तुम जीत लो, तुम जीत गए चलो मैं हार गए, उसमें बात की बात पूरी हो जाती। लेकिन वही नहीं होता है, मैं क्यों हार मानूं, मेरी गलती नहीं तो मैं क्यों ऐसा करूं, यह हमारे अहंकार को प्रबलता देता है। तो अहंकारी जिद्दी भी बहुत होता है, अहंकारी उसके अंदर एक बहुत बड़ा दुर्गुण यह होता है कि अहंकारी बहुत संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, फीलिंग बहुत जल्दी आ जाता है, घड़ी घड़ी फीलिंग आ जाए, किसी ने कुछ कह दिया तो टच मी नॉट, बाबा कहते हैं ना शर्म बूटी लाजवंती जिसको कहते हैं, छुई मुई ऐसे होते हैं, तुरंत ही अपमान का अनुभव कराता है, अभिमान अपमान का अनुभव कराता है। जब भी अपमान हो, जब भी आप लोगों ने मुझे ऐसा क्यों कहा गया, मैंने इतना अच्छा सुनाया, किसी ने अच्छा कहा ही नहीं, मैंने ये किया मैंने वो किया, मेरा तो मान ही नहीं रखा जाता है, तो उसको कदम कदम पर वो अपमान का अनुभव करता रहता है। अभिमान अहंकारी वो विवेक उसका काम नहीं करता है, ज्ञान होते हुए इंफॉर्मेशन बहुत होता है लेकिन अंदर महसूसता की शक्ति नहीं होती है, विवेक पूर्ण ढंग से वो काम नहीं कर पाता है, एक बहुत बड़ा नुकसान है। नेक्स्ट, अहंकारी की सबसे बड़ी एक कमी यह है कि अहंकारी उसका चित्त स्थिर नहीं रह सकता है, वो कभी भी शांत होकर के एकांत में बैठे और अपने अंतर में खोजे उससे होता ही नहीं, वो हमेशा भीड़ ढूंढता है, हमेशा लोगों को ढूंढता है, बहिर्मुखी रहता है, लोगों को बोलना चाहता है, बोलता खूब है और बताना चाहता है कि मैं ज्ञान का भंडार मेरे अंदर है, मेरे जैसा कोई ज्ञानी है नहीं, मेरे पास बहुत पुराना ज्ञानी हूं, मैं बहुत योगी भी हूं। और अहंकारी जो है वो योग में शांत चित्त स्थिति का भी अनुभव नहीं होने देता है, प्रायः योग में बैठे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं योग पूरा नहीं हुआ सीधा खड़े हो जाएंगे भागेंगे, जैसे लगता है अंदर में बेचैन बैठे थे कोई बांध के रखा था, योग पूरा नहीं हुआ कि भागे हैं बड़ी जोर से। ये भी हमारी अपवित्रता कहें या अहंकार कहें, ये भी हमारी इस चीज की निशानी है। जो लवलीन स्थिति वाला होगा उसको तो वापस आने में भी टाइम लगेगा, उसको जल्दी से बोलने का मन ही नहीं कहेगा। तो ये है ज्ञानियों में कि योग तो कर रहे हैं लेकिन योग में जो लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं होता है तो जरूर समझ लेना चाहिए कि मेरा योग नहीं लगा है, या फिर हम योग में व्यर्थ को बहुल्यता देते हैं, या तो बाबा से जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं है, या फिर बाबा से जो प्राप्तियां हो रही हैं उन प्राप्तियों का आभास नहीं है। जैसे फल से लदा हुआ वृक्ष सहज ही झुक जाता है, ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा वो विनम्र हो जाती है, उसको कदम कदम पर उसके अंदर से विनम्रता छलकती है, निर्माणता छलकती है, और वही जो है परमात्मा के बड़ा करीब होता है। बाबा को बच्चे बड़े प्रिय लगते हैं जो निरहंकारी होते हैं, जिनको अहंकार नहीं होता है, बाबा उनको बड़े करीब अनुभव करता है। और जो अहंकारी है नाचता बहुत है, अपने आप को बहुत दिखाना चाहता है, तो ऊपर बाबा भी मुस्कुराता है, वाह करता तो मैं हूं, सारा नाच रहा है ये है? ये अपने ऐड में है, तो वो भी तो तमाशा देखता है ना। हम लोग क्या हैं? हम सब इतने ब्रह्मा कुमार भाई बहने हैं, हम अपने संकल्पों से नए विश्व की रचना करें, हम यहां बैठे बैठे नए युग का निर्माण करें। लेकिन निर्माण करते करते हम निर्माण कर रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें निर्माण करने में अगर एक भी व्यक्ति अपने आप को दिखाता है तो पूरे ही ग्रुप को, पूरे ही संगठन को उसमें बदबू फैला देता है, बहुत नुकसान कर देता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होता है तो कम से कम अहंकार तो ना हो। अहंकार जो है वो सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मुख से भी वर्णन नहीं करना चाहिए। यहां पर एक लल्लू काका था, बहुत लल्लू काका सूरत का, बूढ़ा था बुजुर्ग था, वो आता था तो सब जो काका धोती पहनता था टोपी पहनता था सूरत का, तो वो काका को लोग हमारे मधुबन वाले और जो दूसरे भी हैं वो थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते थे, कहीं धोती खींचा कहीं वो किया, कभी ये मिले कभी वो मिला। तो मैं देखता था कि उसको कभी वो नहीं होता था, लेकिन जब एक भाई ने बताया कि इसने पहली बार कार खरीद करके यज्ञ में दिया, तो जब मैंने देखा कि इतने कोई व्यक्ति हमारे इस संगठन में एक एक भाई बहन आप बैठे हैं, आपके जीवन आप कैसी परिस्थितियों से निकले हैं, कितने एग्जाम दिए, कितने पेपर हल किए, कितने संघर्ष करके आप बाबा के बने, आपकी प्योरिटी कितनी अच्छी है, आप यज्ञ में कितना दान देते हैं। आप थोड़े ढंग के चोट पर बताते हैं कि मैं ये करता हूं, अपने यहां यज्ञ में तो दान देने की प्रथा यही है कि गुप्त दान दो, जो न देने वाला दे और लेने वाले को भी पता न लगे कब आ गया हो, गुप्त दान। अब भाई ये कितना दान करते हैं, कितना सेवा करते हैं, हमको लगेगा कि हम तो मधुबन में रहते हैं, अपने आप को बड़ा तेज समझते, लेकिन जब इनकी कहानी सुनो, इनके दान की कहानी सुनो, इनके पुरुषार्थ की कहानी सुनो, तो पता लगता है वो कितने महान लोग हैं। बाबा का एक एक बच्चा कितना महान है, अगर उसके अनुभव सुनिए तो हमको प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने का। इसलिए शल कभी भी किसी को अहंकार आए, आज तक हमने देखा यज्ञ में अपने जीवन काल में मधुबन में रहते हुए 45 वर्ष हो गए, इन दिनों में रहते हुए भी हमने अनुभव किया इस चीज को कि कितने लोग आए, उनको अपना अहंकार था, दादी ने कुछ कह दिया, फलाने ने कुछ कह दिया। मधुबन में आने के बाद जहां तक पहुंचना ही मुश्किल होता है, मधुबन निवासी बनने के बाद भी अगर उसको अहंकार रहा तो वो चला गया, वो पहुंच गए, चले गए। यज्ञ में भी ऐसे आए, बेगरी पार्ट में आए। कई भाई तो ऐसे थे, कुछ भाई वो कहते थे, बाबा आप बोले तो मैं कुछ, बहनों को बड़ी जरूरत पड़ती है, साबुन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना चीज नहीं है, इनका जो है तकलीफ देखी नहीं जाती है, आप कहें तो जाएं कुछ। बाबा कुछ बोलता नहीं था, बच्चे क्या करना है, बाबा का यज्ञ है। लेकिन जब दो बार तीन बार कोई बोले तो समझ में आता है कि भई इसका मन जो है जाने को है। और बाबा जानता था कि जो गया वो गया, वो फिर वापस नहीं आया। तो ऐसे करके जो गए और बहनों के लिए कुछ लेकर आऊं, कुछ ये करूं, यज्ञ में कुछ दूं, वो गए तो उनका पता ही नहीं लगा कि कहां गए, और आए तो दो चार होकर के तैयार होकर के आए पूरी फैमिली के साथ। तो यहां यज्ञ में रह करके अगर बाबा का बनने के बाद और परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने के बाद यदि हमारे अंदर अहंकार है तो समझ लेना चाहिए अभी हम आध्यात्मिक हुए ही। आध्यात्मिकता का अर्थ ही है अहम से शून्य हो जाना। अगर अहंकार अंदर है तो वो कभी भी किसी के भी समझाने को, किसी की सावधानी को, किसी के संकेत को, किसी के इशारे को वो सहज स्वीकार करता ही नहीं। उसको इशारा दो कि आपके अंदर ये चीज है, ये ठीक कर दो, नहीं मैं क्यों ऐसा हूं, मैं थोड़ी हूं ऐसा, वो स्वीकार नहीं करेगा। इसी कारण अंत में जब लास्ट में ईश्वरीय टचिंग मिलेगी, बाबा की टचिंग मिलेगी, तो वो उसको स्वीकार नहीं होगा। अहंकारी स्वीकार नहीं कर सकता है। बाबा भी यहां पर मुरली सुनाता है, लेकिन जो अहंकार से भरे हैं वो बाबा की मुरली में भी मीन मेघ निकालते रहेंगे कि ये है, वो है, वो है, वो है, और उनकी बुद्धि जो है बहिर्मुखी रहेगी, बाहर भटकती रहेगी। बाबा की मुरली में रस उसको मिलेगा जो अहंकार से शून्य होगा। मेरे बाबा मेरे लिए क्या कहते हैं, उस प्यार से, उस स्नेह से सहज होकर के वो सुनेंगे गहराई से और हृदय से स्वीकार करके अपने परिवर्तन में लग जाएंगे। रियलाइजेशन, जिसको रियल आई कहते हैं, जब तक वो रियल आई खुली नहीं है, ज्ञान का, विवेक का वो खुला नहीं है, तब तक महसूसता होती ही नहीं। जितनी गहरी महसूसता उतना गहरा परिवर्तन। आज ही हमको पता लग जाए कि मेरे इस कमी के कारण मैं पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरी इस फलाने कमी के कारण मैं योग युक्त नहीं हो पाता हूं, या मेरी इस कमी के कारण जो ईश्वरीय मिलन का रस होना चाहिए, जो परमात्म प्राप्ति का आनंद आना चाहिए, जो ईश्वरीय परिवार को मिलकर के जो खुशी होनी चाहिए और एक एक भाई बहन को देख करके जो आनंद से भरना चाहिए, जो संगम युग का आनंद आना चाहिए, जो अतीन्द्रिय सुख का मजा आना चाहिए, ये सब उनको नहीं हो सकता है जिनको अहंकार है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अहंकार से शून्य होते चले। अब कैसे अहंकार से शून्य होंगे? पहली बात, जितना जितना हम स्वमान का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हर आत्मा को रिस्पेक्ट चाहिए, हर आत्मा को उसकी पहचान चाहिए, हर आत्मा अपने अस्तित्व के लिए जन्म लेता है और वो समझता है, सोचता है, मैं भी कुछ हूं, कुछ बनूं, कुछ करूं, कुछ हो जाए, तो अपना एप्रिसिएशन चाहता है कि लोग मेरी बात का एप्रिसिएट करें कि बहुत अच्छे हैं ये, ठीक हैं ये, अच्छा है। तो उसके लिए क्या करना होगा? स्वमान का अभ्यास करें। जितना जितना गहरा स्वमान उतना उतना ही अहंकार से शून्य। लेकिन होता क्या है कि स्वमान नहीं होता है और हम सबको दूसरा स्वमान मिल गया, भगवान हमें मिला है और हमारा परिवार बहुत अच्छा है, निरंतर योग की ओर बढ़ रहे हैं, निरंतर आत्मविमानी बनने की तपस्या में लगना चाहते हैं, वो होता नहीं है तो अहंकार निकलता है। और स्वमान में अभिमान में बहुत कम फर्क होता है, इसलिए देखा जाता है अपने यहां ज्ञान मार्ग में बहुत सारे भाई बहनों के जो भगत होते हैं वो भी जगह जगह पर झुक जाते हैं, इनको देते हैं उनको भी प्रणाम करते हैं बड़े शिष्टाचार के साथ, बड़े अदब के साथ। हमारे यहां कुछ नहीं, ओम शांति भी नहीं करेंगे, और ओम शांति भी किया तो जल्दी से अपने गुमान में रहते हैं, हम क्यों ओम शांति करें। तो अंदर का जो है, आज भी बाबा ने कहा ना कि बच्चे जो ओम शांति करें बाबा, तो ओम शांति के रिस्पॉन्ड देना चाहिए, तो हम सबको कुछ नोट करना चाहिए। हमारी बहनों को भी जो पढ़ाती हैं, जो मुरली पढ़ती हैं, हमने एक बहन को देखा जी, बाद में बताते हैं आपको, ठीक है, बात मैं समझ गया हूं उसको। तो उस बहन का मैं उदाहरण देता हूं कि जब भी मुरली पढ़ती है तो मुरली पढ़ते समय सुन रहा था, तो मैंने कहा ये कुछ अलग लग रहा है, तो कोई भी एक सेंटेंस बोले तो यही बोलती थी, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, हर लाइन के पहले बाबा कहते हैं। मैंने कहा बाबा तो कहते ही हैं, फिर बार बार कहने की क्या जरूरत है। लेकिन अनुभव किया कि उसने इतनी प्रैक्टिस किया कि हर बात में बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, कम से कम बार बार बाबा बाबा तो मुख से निकलता है। बाबा तो ऐसे भी कहते, बच्चे प्रदर्शनी समझाओ तो हजार बार बाबा बाबा बोलो, लेकिन हमारी दिनचर्या में बाबा मुश्किल से ही निकलता है, मैं के अलावा बहुत कम निकलता है। तो हमको इसको नेचुरल रूप से बाबा की प्रैक्टिस करनी चाहिए बार बार। कभी कभी मैं कुछ याद कर रहा हूं लेकिन बाबा की याद भूल रही है, तो मैं लगातार बाबा 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 लगातार, जिसे राम राम की धुन लगा लेते हैं ना, ऐसे कर लेता हूं। तो करने से कुछ देर करने के बाद फिर याद आता है, फिर जाएगा कहां, और शुरू में एक दो बार कहो तो भूल जाता है, लेकिन जब बार बार याद करते हैं तब याद आता है। तो मैंने अनुभव किया कि उसने इतनी मेहनत किया कि हर लाइन से पहले कहने के लिए ये कहना, इससे बाबा की भी याद आती है, और बाबा बार बार कहेंगे तो सामने वाले को भी बाबा के प्रति प्यार बढ़ता है। किसी ने मम्मा को भी कहा, मम्मा से कहा, मम्मा आपको इतनी बार मुरली पढ़ने की क्या जरूरत होती है, आप तो ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं। मम्मा ने कहा कि इसलिए नहीं मैं पढ़ती हूं कि मैं भूल जाती हूं, बल्कि जितनी बार पढ़ती हूं उतनी बार मेरे बाबा मेरे सामने आ जाते हैं, उतनी बार मेरे बाबा मेरे सामने आ जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है बार बार बाबा 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 कहने की, बहुत अच्छा। आप सब घरों में रहते हैं, कई भाई बहनों को हमने देखा है, उनके पास जाओ तो कहते भैया ये बाबा की दुकान है, ये मकान किसका, भैया बाबा का मकान है, ये गाड़ी किसकी है, बाबा की है, हर बात में बाबा बाबा किए हैं, कि ऐसे रहते हैं जैसे कि उनका कुछ है ही नहीं, सब बाबा का ही, बहुत बड़ी बात है। और हंसी की बात है, वो कहते हैं कि सब पूछा कि ये किसका है, तो कहते बाबा का, ये किसका है, बाबा का, बाबा के कमरे में गए कहते हैं ये किसका है, कहते यही मेरा है, बाकी तो सब बाबा का है। कहते हैं ना, ये बाबा के कमरे में गए, कहते यही बाबा ही मेरा है, बाकी तो सब बाबा का है। तो इस तरह से घरों में रहकर पुरुषार्थ में, दूसरी बात स्वमान के बाद, एक अभ्यास करना है कि मैं ट्रस्टी हूं, मैं निमित्त हूं, मैं करनहार हूं, बाबा करावनहार है। जितना इस बात की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बाबा के आप करीब अनुभव करेंगे, अहंकार से शून्य होते जाएंगे। तो ट्रस्टी बनकर के रहने की सुख, इसके लिए क्या करें, इसके लिए कोई भी बात को करने के लिए जब उसको दोहराएंगे तब आपको याद भी रहेगा। जैसे मैं शांतिवन में, अपने भवन में, आनंद भवन में सेकंड फ्लोर पे जाता हूं तो मोस्टली तो सीढ़ी से ही जाता हूं, लेकिन लिफ्ट से जाना हुआ तो वहां पर भी मैंने प्रैक्टिस कर लिया है कि जैसे पांव रखता हूं तैसे ही याद आता है, क्योंकि और कुछ याद करना नहीं होता है, मैं फरिश्ता जा रहा हूं। और जैसे आता हूं तो लगता है मैं फरिश्ता आ रहा हूं। इसको इतना पक्का कर लिया वहां पहुंचते ही याद आ जाता है। ऐसे ही जैसे घर से आप निकलते हैं वहां निशानी लगा दें, बाबा के कमरे से भी होके जाते हैं तो वहां पर जिस बात की प्रैक्टिस कर लें वहां पर कुछ दिन तक, तो आप कुछ दिन तक प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो पक्की आदत बन जाएगी और आपकी दिनचर्या में शुमार हो जाएगा, आपको सहज ही बाबा की याद आ जाएगी, उस चीज की याद आ जाएगी। तो ऐसी ट्रस्टी बनने वालों के लिए गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी पहुंचे, आपने उसको ऑन किया रिमोट से, जैसे ऑन किया आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, एक सेकंड के लिए प्रैक्टिस कर लो कि ये बाबा की गाड़ी है, यात्रा हमारी अच्छी होगी, बाबा मेरे साथ है, मेरी गाड़ी पर मेरे बाबा की लाइट है, ऐसे प्रकाश, ऐसे कर ले, दो तीन बार दोहरा दे, और जब भी गाड़ी के पास जाए फिर दोहरा दे। तो इसको दोहराते दोहराते जब कुछ दिन की आदत डाल देंगे तो आपको ये पक्का हो जाएगा और आपको फिर भूलेगा नहीं, ठीक है ना। ऐसे भोजनालय में जाते हैं, माता हमारी जाती है भोजन बनाने के लिए, तो जब भी भोजन बनाने के लिए जाएं और भोजन बनाना शुरू करें तो जाने से पहले एक सेकंड के लिए वहीं दरवाजे पर, किचन के वहीं पर खड़े होकर के एक सेकंड के लिए रुकें और ये संकल्प करें अब मैं भोजन बनाने के लिए, बाबा आप भी आओ, आपका भोजन बना भोग बनाने के लिए मैं जा रहे हूं। ऐसे करके जब स्मृति के लिए बार बार करेंगे तब ये ट्रस्टी का भाव आएगा, अन्यथा इतना सहज नहीं होता है। जो अंदर में अहंकार होता है, मैं तो घर का मुखिया हूं, मैं तो ये हूं, मैं इतना कमाता हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं ये हूं, इतना अहंकार होता है वो जल्दी जाता ही नहीं, कितना भी आप निरहंकारी बनने के संकल्प करते रहे वो जल्दी से जाता नहीं। और इसी प्रकार से अहंकार से मुक्त होने के लिए और अभ्यास करें, अहंकार से मुक्त होने के लिए अपना चार्ट जरूर रखें। जब तक अपनी चेकिंग नहीं होती है, कमजोरियों का पता नहीं लगता है, तब तक हम उसको ना तो निकालने की कोशिश करते हैं और ना वो हमारी पहचान में आती है हमारी कमजोरी, और कमजोरी पहचान में नहीं आती है तो वो भी हमारे अहंकार का एक हिस्सा बन जाती है। गांव में एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं, लेकिन गांव में जब चलता है और यहां लाठी लिए रहता है और वो चलता है तो छोटा व्यक्ति भी समझता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा हूं। और अहंकार की तो बड़ी बात यह है कि कुछ ना करने का भी अहंकार हो जाता है। अहंकार ढूंढता नहीं कि जो पढ़े लिखे उनको अहंकार आए, अपने अनपढ़ होने का भी, अपने वहां गांव का दादा होने का भी अहंकार हो जाता है, और कभी कभी तो निरहंकारी बनने का भी अहंकार हो जाता है। ये और भी बड़ा सूक्ष्म है कि मैं बड़ा निरहंकारी हूं, मैं बड़ा निरहंकारी हूं। अभी जैसे नीचे कुमारों का, समर्पित भाइयों का स्वागत करके भी आ रहा हूं, तो स्वागत करते हुए जब हमेशा होता है, हमने तो प्रैक्टिस अच्छी की, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन साउंड वाला वो कुछ हो रहा था ऐसा कि बाजा बजे फिर बंद हो जाए, फिर बजे फिर बंद हो जाए, सुनाई ही नहीं पड़े। वो पूरे गाने में ऐसा होता रहा है और हम जब गा रहे हैं वो पीछे तो आवाज जा रही है और हमको लगता है सुनाई नहीं पड़ रहा है। फिर बाद में आया तो बाद में मैंने कहा कि मैंने तो वहां ज्ञान सरोवर में भी गीत था, उसको छोड़ के गाने के लिए यहां आए, अब कुमारों के इनके लिए समर्पित आए, इनके लिए साल भर में तो एक बार है, अगर ये सुनाई पड़ता तो कितना अच्छा होता। फिर मैंने सोचा आपने तो अपना काम कर लिया, अभी नहीं सुनाई पड़ा, नहीं हुआ, कुछ बात हुई, अब उसके लिए किसी को ब्लेम करें, क्या करें। अच्छा वहां गा भी रहे हैं तो हमारी एक्सप्रेशन भी दिखाई पड़ती है कि गा तो रहे हैं लेकिन इनके चेहरे पर जो खुशी होनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए, वो कम हो रहा है। अब ये चीजें छोटी छोटी चीजें, तो मैंने कहा अभी तो ऊपर जा रहा हूं, जो हुआ ठीक है, हमने तो अपना संकल्प जो किया था वो मैंने दे दिया। तो ऐसे करके बीच बीच में ये होता है कि ये जो चीजें हैं ये अहंकार के दिखावे में प्रदर्शन बहुत होता है। सामने आप गा रहे हैं, आपका गाना नहीं हुआ तभी लोग कहेंगे, कुछ कमी हो गई अपनी तरफ से तभी लोग कहेंगे, लोग कहेंगे अच्छा हम बहुत अच्छा है, तो इसमें तुरंत ही अहंकार पूरा पारे चढ़ जाता है। हमेशा यही होता है कि मैं गाऊं और लोग कहें वाह आपने क्या गाना गाया, मैं गाना लिखूं तो लोग कहें वाह क्या आप लिखते हैं, तो हमेशा मन में ये अंदर अंदर कहीं न कहीं गहराई से अहंकार का इतना गहरा भाव होता है कि वो निरहंकारी होना, कितना भी कहते हैं कि बाबा आपने कराया, बाबा आपने बनवाया, बाबा आपने सुनाया, बाबा आप ये करते हैं, बाबा पल पल बहुत मदद करते हैं, लेकिन ये जल्दी से आता नहीं। इस चीज के लाने की प्रैक्टिस जो है हर एक को अपने लेवल पे करते रहना है, और यही हमारे पुरुषार्थ में सबसे बड़ी बाधा बनती है। और अहंकार से शून्य होने के लिए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जो जितना अंतर्मुखी बनेगा, जो आत्मचिंतन में, आत्ममंथन में, आत्मदर्शन में, आत्मन्वेषण में, आत्मविश्लेषण में, आत्मनिरीक्षण में, आत्मपरीक्षण में, आत्मसंशोधन में, आत्मपरिमार्जन में, आत्मपरिवर्तन में, जो लगातार लगा हुआ है इस प्रयोगशाला, बहुत प्यारा सा संसार है, अंदर का आनंद ही अलग है, उस आनंद का वर्णन वर्णनातीत है। इसलिए अहंकार से शून्य वही हो सकता है जो इस शरीर से निराकारी बन जाए। निराकारी ही निरहंकारी हो सकता है, जब तक शरीर है तब तक कुछ न कुछ इसका भान और अभिमान निरंतर होता रहेगा। आत्मभानी बनने के लिए एकांत लेना, अपने लगन में मगन होना, इसकी बड़ी जरूरत है। आप सब यहां से जा रहे हैं, आप सबको चार तपस्या रोज करनी है। पूरी भट्टी ये निरंतर चलती रहे, इसके लिए हर रोज भट्टी करनी है। पहली भट्टी है आत्मअभिमानी बनने की, इसके लिए एक घंटा रेगुलर टाइम देना चाहिए। निकल जाए थोड़ा सा, घर में ही रहकर, सेंटर पर ही रहकर, घर पे रहकर एकांत जरूर लेना है। अच्छा हो प्रकृति का सानिध्य मिले तो बहुत अच्छा है। ढेर सारे गीतों की रचना जो हुई है वो इस संबंध में हमको प्रकृति में, सवेरे यहां पर जब से शुरू से आया हूं तो यहां पर वर्षों वर्षों हो गए, यहीं गद्दी पर बैठता हूं, सवेरे मॉर्निंग मेडिटेशन करता हूं, शांति वन में तो वहां पर हूं, ये चांस मिला तो अमृत बेला कभी मिस ना हो इस लगन में हमेशा रहता। और यही नहीं, अमृत बेला हमारी दिनचर्या का सबसे अच्छा होता है। जब हम 95 से भी ऊपर हमारा ग्राफ होता है कि मैं एक सेकंड भी उसमें वेस्ट नहीं करने देता। यहां योग में बैठा, खूब आनंद से भर गया, फिर यहां से निकला, वॉकिंग के लिए निकल जाता था पहले, अभी आजकल तो डॉक्टर कहते हैं भाई सूरज की रोशनी में घूमो, लेकिन जितने हजारों गीतों की रचना जो बाबा के मेडिटेशन के जो आप की सुनते हैं, वो सवेरे में निकल जाए पूरा अंधेरे में, थोड़ा सवेरे का टाइम होता है 5:30 से 6:30 के बीच में या 6 से बीच में, तो उस समय न तो जानवर होते हैं न तो इंसान होते हैं, सवेरे घूम लिए एक नक्की में एक गीत तैयार हमारा हो गया, तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया, वहां रघुनाथ मंदिर के पास जा रहा हूं तो वो गीत बना, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला, सनसेट पॉइंट की तरफ गया वहां बना, ये वक्त है कम लंबी मंजिल, एक एक गानों के पीछे वो चीज है। ऐसे ही आत्मदर्शन के जिसमें है, आय आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, फिर भिरकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, पलकें उठा कर मैं जगमगाती, मैं झिलमिलाती, सदा मुस्कुराती, मस्तक मड़ियूं मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं, ये सब जितने भी गीत हैं, ये सब गीत जो है ऐसे अंतर्मुखी बन करके बाबा की लगन में मगन है, तब इससे सब चीजें निकलती हैं। तो आइए अंतर्मुखता में प्रवेश करें और अपनी दिनचर्या को अहंकार से मुक्त करते चले, क्योंकि संपूर्णता के पूर्व निरहंकारी बनना, संपूर्ण निरहंकारी बनना, निराकारी बनना हमारी दिनचर्या का प्रमुख अंग है। आपको चारों तपस्या में एक तो पहला आत्मभिमानी बनने की तपस्या करते रहना है, दूसरी तपस्या है निरंतर याद की, निरंतर याद, ऐसे हाथ करें, ऐसे हाथ करें और यहां एक फील करें, अनुभव करें कि जैसे मेरे सिर पर मेरे बाबा है और बाबा की लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है, बाबा और किरणें और मैं आत्मा, बाबा दिखाई पड़े और किरणें दिखाई पड़े और मैं आत्मा दिखाई पड़ू। हमारे पुरुषार्थ का यही एक डेली प्रैक्टिस हो, निरंतर प्रैक्टिस हो। मेरी गाड़ी के ऊपर बाबा है, मेरे घर के ऊपर बाबा है, मेरे सिर के ऊपर बाबा है, बाबा की छत्र छाया में मैं हूं। ये निरंतर अभ्यास हो जाए और अंत में जब शरीर भी छूटे तो भी लगे कि अब मैं ऊपर गया, बाबा की लाइट जो आ रही थी वो जैसे एक हुक बन करके मुझको लेकर के वापस लेकर जा रही है और मैं शरीर से निकल के जा रहा। ये अभ्यास रेगुलर करते रहिए, रेगुलर करते रहिए। अंत में एक भी अभ्यास आपको अंत में बाबा की याद, निरंतर याद में बड़ी मददगार बनेगी। भोजन पर भी जितना हो सके मौन में भोजन करें, बाबा को याद करने की प्रैक्टिस कर लें। मैं तो कविता में बना लिया हूं, बहुत लोगों को सुनाता भी हूं, आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ। ऐसे करके दोहराओ दो बार और फिर शुरू हो जाओ। हाँ? तो कम से कम याद तो इसी बहाने करें, याद करने को कोई ना कोई ढंग होना चाहिए। ऐसी ही तीसरी तपस्या है संस्कार परिवर्तन की। संस्कार परिवर्तन की बहुत अद्भुत ये तपस्या होनी ही चाहिए। अभी कल परसों मुरली में था ना, संस्कार परिवर्तन की। संस्कार जो है वो हमारे पुरुषार्थ में कब कौन सा संस्कार, कब कौन सा संस्कार, जब तक गहराई से एक एक संस्कार के पीछे न पड़े तब तक वो चीज हटती नहीं। और चौथे पुरुषार्थ है संपूर्ण पावन बनने के पुरुषार्थ, जिसका मतलब है व्यर्थ से भी मुक्त। संपूर्ण पावन बनना माना संपूर्णता की ओर जाना, यानी कि ये दुनिया संसार, हे भगवान हे राम जी, संसार बना ही नहीं, जैसे मैं और बाबा, संपूर्ण एकाग्रता ही संपूर्ण पवित्रता और संपूर्णता ही यही। इसलिए इस प्रयास में रहे। तो ये चारों प्रयास करें और अंत में मेरी सात बात नोट कर लें जो दिनचर्या में प्रायः करता हूं। पहले उठते ही बाबा को सामने देखने का प्रयास करें, बाबा को नमस्ते प्यार से कर लें, प्यार से भर लें, बहुत अच्छा है। दूसरा, एक स्वमान लेकर दिन भर लगभग 20 बार 25 बार ऐसे करें, सब कोई ऐसे करें, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं महान हूं, मैं मेहमान हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। ये अभ्यास कुछ पल के लिए करें, ये आपको बहुत मदद करेगा। दिन भर में अगर 20 बार 25 बार ये अभ्यास कर लिया तो आपको ढेर सारे व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, आपकी दिनचर्या में रूहानियत आ जाएगी, अलौकिकता आ जाएगी। तीसरा है अमृत वेले का योग पक्का करें। अमृत वेले अच्छी तरह से याद में बैठें, झुटका वाला योग ना हो, बाबा से करंट लें और सबको दें, देने में ही देने में लग जाए अमृत वेले से। जितना अमृत वेला हमारा पावरफुल होगा उतना ही हमारी दिनचर्या अच्छी बनेगी, इस पर ध्यान दें। चौथा है बाबा की मुरली का अध्ययन करना, मुरली को बार बार पढ़ना, कम से कम 5-6 बार तो होना ही चाहिए, इसके बाद भी जरूरत पड़ती है। जितनी जितनी बार आप दोहराते रहेंगे और औरों को सुनाएंगे, जब तक मुख से आपके बाबा के बोल नहीं निकलेंगे तो आप तब तक आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए याद करने के लिए उसको घड़ी घड़ी औरों को सुनाना जरूरी है। अगर आपने याद कर लिया लेकिन अगर सुनाया नहीं तो फिर भूल जाएगा, धीरे धीरे करके इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आपस में बातचीत करें तो ज्ञान की वार्तालाप करें, तब वो पक्का हो जाएगा। पांचवी बात है कर्मयोग, जो मैंने आपको बताया करते रहें, पांचों स्वरूपों का अभ्यास भी कर लें। छठा है एकांत, चिंतन करना, चार्ट लिखना, और अंतिम है बाबा को धन्यवाद देना, सबको धन्यवाद देना। अब पांचों स्वरूपों का अभ्यास कर लें, बैठ जाएं, इसके साथ पूरा करते हैं। ऐसे करें, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा।